नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली के लाल किला विस्फोट में संलिप्त चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 10वें बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पवेलियन स्थापित किया। और ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति अरुंधति चौधरी और नुपुर ने स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज दिल्ली के लाल किला विस्फोट में संलिप्त चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर चारों आरोपियों को एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
गिरफ्तार आरोपियों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और मुफ्ती इरफान अहमद वागे तथा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। मामले में पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के प्रयासों के अंतर्गत पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पूछताछ जारी है। अभिकरण को हमले के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने जाँच की जिम्मेदारी सौंपी थी। एजेंसी नरसंहार में शामिल आतंकी मॉड्यूल के प्रत्येक सदस्य का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 नाइजीरियाई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बिहार की नवगठित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने, विकास को नई गति प्रदान करने तथा विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जनता ने सरकार की विकास की नीतियों में जो विश्वास जताया उससे प्रगति की राह और प्रशस्त हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की सरकार मिलकर के जो काम अगले 5 सालों में बिहार में करेगी वो अपने आप में एक ऐसा परिचय बनेगा विकास का जिसे देश में जाना जाएगा।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री सूद ने कहा कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उपयुक्त संसाधन सुनिश्चित कराना सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि ये वितरण कार्यक्रम गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्यार्थियों के जरूरी शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।
एर्गोनॉमिक फर्नीचर हो, डायनामिक क्लासरूम हो, ऐसी सब चीजें इन बच्चों को भी मिले, ऐसे और बहुत सारे सुधार नगर निगम के स्कूल हो चाहे कोई और स्कूल हो दिल्ली की सरकार लेकर आएगी। कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ ने आज नई दिल्ली में विश्व के बच्चों की स्थिति 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें इस बात का जिक्र है कि भारत ने पिछले 1 दशक में बाल गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें बताया गया है कि बहुआयामी गरीबी 29% से घटकर 11% हो गई है, जिससे 24 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ सके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सतत विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर है। दिल्ली के चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और उनके स्थायी समाधान पर संबंधित विभागों की एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान श्री खंडेलवाल ने कहा कि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना समय की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत व्यापार में वृद्धि हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की स्वच्छता, सुंदरता, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 10वें बजट के पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अगले केंद्रीय बजट को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। एक रिपोर्ट।
बजट पूर्व परामर्श में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, श्रम मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। इससे पहले वित्त मंत्री ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ बैठक की। वित्त मंत्रालय प्रतिवर्ष विशेषज्ञों, उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों और राज्यों के अधिकारियों के साथ कई बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। इन विचार विमर्शों का उद्देश्य केंद्रीय बजट विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान देना सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
भारतीय नौसेना की नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन 2025 का चौथा संस्करण 26 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
आज एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय व्यात्स्यायन ने कहा कि स्वावलंबन 2025 भारतीय नौसेना के नवाचारों और स्वदेशीकरण पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष की संगोष्ठी में विशिष्ट उपकरणों को प्रदर्शित करने वाले समर्पित प्रदर्शन क्षेत्र शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नव प्रवर्तकों, उद्योग भागीदारों, शिक्षाविदों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है। स्वावलंबन 2025 का विषय है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोके रखते हैं तो ये संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा। फांसी घर मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिरला विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए आज की बैठक में फिर उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले भी इन्हें समिति द्वारा 2 अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुए। दोनों निर्धारित बैठकों में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए समिति ने अब विचाराधीन मामले में आगे की कार्रवाई तय करने का निर्णय लिया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब तक श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक यात्रा के वास्ते विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे 22 नवंबर से 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पहली रेलगाड़ी पटना साहिब से और दूसरी पुरानी दिल्ली से चलेगी। पुरानी दिल्ली से विशेष रेलगाड़ी 22, 23, 24 और 25 नवंबर को सवेरे रवाना होगी और उसी दिन दोपहर में श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली यातायात पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा पवेलियन स्थापित किया है। यातायात पुलिस इस पवेलियन के माध्यम से आगंतुकों को सड़क सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता प्रदान कर रही है। एक रिपोर्ट।
इस सड़क सुरक्षा पवेलियन में शैक्षिक खेल, व्यवहारिक शिक्षण सत्र और सड़क चिन्ह प्रश्नोत्तरी के साथ साथ चित्रकारी प्रतियोगिता भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस CPR प्रशिक्षण सत्रों के साथ साथ राइडिंग ट्रेनर सिमुलेटर के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दे रही है। इन पहलों के माध्यम से अब तक 100 से अधिक स्कूली विद्यार्थी सहित 10,000 से अधिक आगंतुकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा चुका है। दिल्ली यातायात पुलिस ने सुरक्षित सड़क व्यवहारों को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर हमेशा बल दिया है। यातायात पुलिस सभी नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित और कुशल सड़क वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने साल भर चलने वाली डेटा आधारित सख्त प्रवर्तन रणनीति से प्रदूषण नियंत्रण को तेज किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बताया कि राजधानी में एंटी डस्ट अभियान के अंतर्गत निर्माण उद्योग और वाहन जनित प्रदूषण पर लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन निगरानी की जा रही है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस अभियान के पहले चरण में 1200 से अधिक बड़े निर्माण परियोजनाओं की जांच की गई है और गैर पंजीकृत स्थानों की पहचान भी की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वहां पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा 48 जगहों को सील भी किया है। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में आज महिला मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति अरुंधति चौधरी और नुपुर ने स्वर्ण पदक जीते। मीनाक्षी हुड्डा ने फोजिलोवा फर्जोना को, प्रीति ने सिरीन चाराबी को, अरुंधति चौधरी ने जोकिरोवा अजीजा को और नुपुर ने सोटिम्बोएवा ओलिटनोए पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा में पदक अपने नाम किए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की आज 96वीं जयंती है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्रियों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि मिल्खा सिंह ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से विश्व पटल पर भारतीय ध्वज को शान से लहराया। उन्होंने संघर्ष, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम की अमर गाथा रचकर देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। इंडिया पोस्ट ने आज नई दिल्ली में पुनर्विकसित दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कर उसे नया रूप दिया। ये नया पोस्ट ऑफिस जेंजी से गहराई से जुड़ने की देश भर में शुरू की गई पहल के अंतर्गत दूसरा कैंपस पोस्ट ऑफिस है। इस पोस्ट ऑफिस में फ्री वाईफाई, विद्यार्थियों के लिए सुविधा केंद्र, पार्सल पैकिंग सर्विस और कम दर में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधा उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली के लाल किला विस्फोट में संलिप्त 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 10वें बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पवेलियन स्थापित किया और ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति अरुंधति चौधरी और नुपुर ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।